माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय गौरांगनिताय 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 जय गौरांगनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य గౌర ప్రేమానంది హరినామ సంకీర్తనకి శ్రీల ప్రభుపాదకి శ్రీరామనవమి మహామహోత్సవకి శ్రీరామచంద్ర భగవానకి ఓం అజ్ఞాంతిమిరాందస్య జ్ఞానాంజన శిలాకయ చక్షురోన్మిలితం మేన తస్మై శ్రీగురువే నమః శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపదాం సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీనితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్తదేశ తారిణే జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తరుంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ హరే కృష్ణ. ఆజ్ హమ్ శ్రీమద్ భాగవతం నవమ స్కంద్ అధ్యాయ 10 సే 51 శ్లోక్ సే పఢ్ రహే హం. త్రేతాయాం వర్తమానాయాం కాలకృత సమోభవత్ రామే రాజని ధర్మజ్ఞే సర్వభూత సుఖావహే. భగవాన్ శ్రీ రామచంద్ర త్రేతాయుగ్ మే రాజా బనే థే కింతు ఉన్కీ సర్కార్ ఉత్తమ్ హోనే సే వహ యుగ్ సత్యుగ్ జైసా థా. ప్రత్యేక వ్యక్తి ధార్మిక్ ఏవం పూర్ణ సుఖీ థా. తో యహా భగవాన్ శ్రీ రామచంద్ర జో గుణ హై ఉన్కా వర్ణన హై కి ఇన్కా స్వభావ ఇత్నా దైవీ థా కి భలే హో త్రేతాయుగ్ థా లేకిన్ సబ్కో సత్యుగ్ లగ్ రహా థా. ఇస్లే తో అయోధ్యా కాండ్ శురు యహాన్ సే హోతా హై కి దశరథ్ మహారాజ్ భగవాన్ సభీ రాజాఓ కో బులాతే ఏకత్ర ఔర్ భగవాన్ శ్రీ రామచంద్ర కే గుణో కా వర్ణన కర్నా శురూ కర్తే హై. బాల్ కాండ్ మే అయోధ్య కా వర్ణన లవ్ కుష్ కే ద్వారా ఔర్ ఫిర్ అయోధ్య కైసీ అద్భుత నగరీ హై ఫిర్ మహారాజ్ దశరథ్ సబ్ కుచ్ హోనే కే బాద్ భీ సుఖీ నహీ హై సంతుష్ట నహీ హై ఔర్ ఫిర్ భగవాన్ శ్రీ రామచంద్ర ఉన్కే దశరథ మహారాజ్ పుత్ర కామేష్ఠ యజ్ఞ కర్తే హై ఔర్ శ్రీరామ్ భరత్ లక్ష్మణ్ శత్రుఘ్న ఇంకా ప్రాకట్య హోతా హై ఔర్ ఫిర్ గురుకుల్ మే జానే కే బాద్ ఫిర్ వో విశ్వమిత్ర ముని కే సాథ్ యజ్ఞ కా రక్షణ కర్నే జాతే హై వాపస్ ఆనే కే బాద్ వహీ సే మిథిలా జాతే హై వహాన్ చారో రాజకుమారం కా श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान गौरा महाप्रभु के चरण। चारों राजकुमारों का विवाह होता है, वहाँ से वापस अयोध्या आते हैं और अयोध्या में कई वर्षों तक सुख से आनंद से सारे राजकुमार अपने बंधुओं के साथ अपने सगे संबंधी मित्र परिवार के साथ आनंद से रहते हैं। उसी समय भरत शत्रुघ्न अपने पत्नियों के साथ भरत महाराज का जो कैकेयी का जो महिका था वहाँ जाते हैं कैकेयी देश में, और वहाँ होने के बाद जाने के बाद दशरथ महाराज अचानक से राज्याभिषेक का घोषणा करते हैं। वहाँ से अयोध्या कांड शुरू होता है और फिर भरत सब कुछ होने के बाद जब भरत महाराज दशरथ महाराज का अंत होता है और उसके बाद भरत महाराज आते फिर चित्रकूट तक जाते हैं और चित्रकूट में भरत महाराज और श्री राम का जो मिलन होता है वहाँ भेंट होती है और उसके बाद वापस चले आते हैं भरत महाराज और श्री राम सीता और लक्ष्मण अरण्य में प्रवेश कर उसके बाद अरण्य कांड शुरू हो जाता है। तो ये अयोध्या कांड जिसमें दशरथ महाराज एक दिन अपने जो सारे जो राजमंत्री हैं सभा में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तम चंद्रमीय पुष्येन युक्तम धर्म भृताम वरम यौवराज्ये नियुक्तोऽस्मि प्रात पुरुष पुंगवम्। दशरथ महाराज कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र के चंद्र के भांति समस्त कार्यों में हमेशा जो कुशल रहते हैं तथा धर्मात्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ है कौन, श्री राम, इनका मैं कल सुबह पुष्य नक्षत्र में युवराज पद पर घोषित करना चाहता हूँ। कौन, दशरथ महाराज कहते हैं। और जैसा ही दशरथ महाराज बोलते हैं तो वहाँ सभी जो राजमंत्री कहने जो प्रजा है सब इतना खुश हो जाते, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। स्निग्धो नुनाद सजज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनोघोद दुष्ट कृष्ट सन्नादो मेदिनीं कंपयन्तिनः। बताया जाता है इसका वर्णन ऐसा करते हैं वाल्मीकि ऋषि कि जब है घोषित किया उन्होंने युवराज करके खाली बोला कि मैं करना चाहता हूँ, इस सुनकर ही इतनी प्रजा खुश हो गए, इतने मंत्रीगण खुश हो गए कि ये जो हर्ष ध्वनि थी श्री राम की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इतनी ध्वनि इतनी प्रबल थी, इतना इनका जो प्रजा का हर्ष इतना ध्वनि इतनी प्रबल थी कि संपूर्ण पृथ्वी जो है कंपायनवान हो रही है ऐसा सबको लगने लगा। इतना जल्लोष, इतना हर्ष, इतना आनंद सभी प्रजाओं में था। ये सुनकर क्योंकि श्री राम का स्वभाव ऐसा था, इतना प्रेम भरा था, इतना सम्मानपूर्ण था कि जो वहाँ के मंत्रीगण थे श्री राम हमेशा उनके साथ मित्र के समान व्यवहार रखते थे। भले सब उनका सम्मान करते थे लेकिन सबको मित्र के समान, और जो रुद्धगण हैं श्री रामचंद्र का एक स्वभाव था कि वो भले अपने गुरु जनों के पास धनुर्विद्या सीखते हो या अलग अलग चीज़ों को वो सीखते होंगे लेकिन बीच में जो समय मिलता था उसमें वो विद्वजनों के पास जाकर बैठ जाते थे, जो रुद्धजन थे उनके पास जाकर बैठते थे और उनके साथ व्यवहार करते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, तो उनकी सेवा करते थे। इससे जो रुद्रगण थे वो भी बहुत प्रसन्न थे, जो मित्र पर तो वही बहुत प्रसन्न था, और जो वहाँ की स्त्रियाँ थी जो रुद्र स्त्रियाँ थी वो भी बहुत प्रसन्न थी। क्यों, क्योंकि श्री राम जो है सब स्त्रियों के साथ एक मातृवत व्यवहार करते थे, वो भी बहुत प्रसन्न थी, और जो तरुण स्त्रियाँ थी जिनकी उनका विवाह होना था वो भी बहुत प्रसन्न थे। क्यों, क्योंकि श्री रामचंद्र जो है एक पत्नी रोध धारण किए थे। दशरथ महाराज की तो 353 रानियां थी। तो कभी कभी लोग बातचीत में बोल देते थे, ठीक है हम लोग दो तीन तो कर लग सकते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र अगर राजा होंगे तो यद्यच आचरति श्रेष्ठ, अगर ये राजा बनेंगे तो वो राजा का अनुसरण बाकी लोग करेंगे। तो हम हमारे जब शादी होगी तो हमारे पति जो है उनके उनकी भी एक ही पत्नी होगी, तो जो युवतियाँ थी वो भी बहुत प्रसन्न थी। इस प्रकार से श्री रामचंद्र खाली युवराज उनको बनाना है सोचकर ही प्रजा जो बहुत प्रसन्न हो गई, और इतना जल्लोष था। तो दशरथ महाराज के मन में भले वो श्री रामचंद्र से इतना प्रेम करते थे, फिर भी थोड़ा सा इनसिक्योर, भले एक क्षण के लिए क्यों ना हो। जब हम अपने व्यवहार में भी देखते हैं, किसी को अगर अपने से ज़्यादा कुछ मिलता है, प्रशंसा हो या कुछ मान सम्मान, कुछ भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, तो हमें कभी कभी इनसिक्योरिटी फील होता है। तो दशरथ महाराज भले वो भगवान श्री रामचंद्र के पिता है, इतना वात्सल्य है, फिर भी एक क्षण के लिए वो एक इनसिक्योरिटी फील होता है कि, और वो सुनना चाहते हैं कि ये जल्लोष क्यों है इतना। तो पूछते हैं कि मैं भी धर्मात्मा राजा हूँ और मैंने भी अपने प्रजा का इतना प्रेम से पालन किया है, तो श्री राम को राजा बनाना चाहता हूँ, युवराज बनाना चाहता हूँ, ये सुनकर आप इतने प्रसन्न क्यों हुए, क्या मेरे में मुझ में कोई दोष है? वो पूछता है। तो कोई प्रजा जो आगे आकर राजा को बोल नहीं सकती कि आप में कुछ दोष है, फिर भी अब दशरथ महाराज में वो देखते भी नहीं थे। तभी जो प्रजा के जो नेता थे उन्होंने कहा कि जरूर हम आपको आपके कुछ दोष बताना चाहेंगे, लेकिन आपको लिखकर भेजेंगे। और तभी जो लीडर्स थे उनसे दशरथ महाराज को कहते हैं कि देखिए आप धर्मात्मा हो, आप में सारे गुण हैं, इतना हमें आपने प्यार दिया है, इतना रक्षण किया है, लेकिन एक दोष आपसे हुआ है। क्या आपसे फिर भी एक दोष आपसे हुआ है? क्या आपने ऐसे सर्वगुण संपन्न, इतने प्रेम भरे हैं, इतने सारे गुणों के भंडार है, ऐसे श्री राम को जो जन्म दिया है वो आपसे दोष हुआ है? क्योंकि हम उससे प्रेम करना रोक नहीं सकते हैं, हम उनका सम्मान करना, उनका गुणगानों का वर्णन करना, उसको रोक नहीं सकते। ये इतने सर्वगुण संपन्न है, इतने दैवी गुण संपन्न है, ऐसे पुत्र को जन्म दिया ये आपसे दोष हुआ है। ऐसे मतलब श्री रामचंद्र का गुणगान ही उसके द्वारा करना चाहते हैं। तो व्यक्ति ये जो दैवी गुण है इसको अगर धारण करता है तो उसके लिए क्या होगा? उसे कुछ अवगुणों को, अनर्थों को त्यागना होगा। कौन से अनर्थ है? खास करके जो साधक है उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर, इन ये जो अनर्थ हैं इनसे ऊपर उठना होता है। क्योंकि अगर नहीं ऊपर उठते हैं तो एक लीडर के लिए, एक सम्मानी व्यक्ति के लिए जो काम है वो क्या करता है? अगर वो अमर्यादित है, उसको अगर भोग करना चाहता है तो क्या करता है? और लिमिट में है काम तो अच्छा है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस करता है वही उसे भस्म करता है काम। वैसे जो क्रोध है वो पानी के जो छिड़के होते हैं उसकी तरह है, पानी के छिड़के अगर उड़ाते हैं तो वो ठंडक देता है, लेकिन अगर बाढ़ आती है पानी की तो बह के लगे पूरा धसमस कर देता है। तो वैसे ये क्रोध है, थोड़ा सा क्रोध जो है कुछ चीज़ों को करने के लिए आसान हो जाता है या आवश्यक होता है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस करता है तो वही धस नस कर देता है। वैसे लोभ जो है ये वो क्या करता है? जैसे कोई पात्र में पानी रखते हैं तो पात्र पानी को संभाल के रखता है, लेकिन वही पात्र को उच्छेद हो जाता है तो कितना ही पानी पात्र में डालो वो पात्र भरता ही नहीं है। वैसा लोभ होता है। एक एक सम्माननीय व्यक्ति होता है, कोई अच्छे चरित्र का व्यक्ति होता है, लेकिन अगर लोभ आ जाता है तो कितना भी उसको दो वो कमी पड़ता है। तो एक छेद की तरह है। और जो मुंह होता है वो क्या करता है, जैसा ऊंट जब कांटे खाता है तो उसे अपना ही खून होता है, उसको उसको स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह से जो व्यक्ति मोहित हो जाता है किसी चीज़ के प्रति, वो उसे खाने वाली है चीज़, उसको नष्ट करने वाली है, उसका ही खून चूसने वाली है। जिसके प्रति वो मोहित हो गया है वो चीज़ उसको ही चूसने वाली है, लेकिन उसको लगता है कि मुझे आनंद देने वाली है जब व्यक्ति मोहित होता है। और इसी तरह से अहंकार जब व्यक्ति में आता है तो अहंकार क्या होता है, जैसे जो मेंढक होता है, ये मेंढक व्यक्ति को, मेंढक जैसे कुएं में होता है, तालाब में होता है, तो ड्राव ड्राव आवाज़ करता है, उसको लगता है कि मेरा आवाज़ बड़ा सुंदर है, रसीला है, और दूसरे मेंढक को मैं आकर्षित कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, सर्प को आकर्षित करता है। वैसे अहंकार जब व्यक्ति में आता है तो व्यक्ति को लगता है कि मैं समाज में बहुत बड़ा बन रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, भाई अपने आप को बड़ा समझ रहा हूँ। एक्चुअली वो क्या करता है, उसके द्वारा माया को, काल को अपने ओर आकर्षित करता है, उसे पता ही नहीं चलता है। और वैसे मत्सर होता है, मत्सर जो है वो जैसे कोई धतूरा होता है, विषैली फूल होता है, कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि इस व्यक्ति को मैं धतूरा क्या होता है उसको चखना चाहता हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ, इसलिए वो क्या करता है, धतूरा को खाता है और क्या टेस्ट है उसको मैं बताऊँगा अभी है? तो लेकिन वो टेस्ट बताने के लिए वो रहता ही नहीं है। और धतूरा अगर कोई तो उसका टेस्ट करके उसको समझाना चाहता है तो टेस्ट बताने के लिए वो रहता ही नहीं है। उसी तरह से व्यक्ति जो है जब किसी के प्रति मत्सर होता है उसको लगता है कि मैं उसको नष्ट करूँगा, लेकिन वो नष्ट होगा ये देखने लिए खुद ही नहीं रहता है किसी के प्रति, क्योंकि मत्सर द्वेष जो है, जैसे दुर्योधन में इतना द्वेष भरा था लेकिन पांडवों का नाश कैसा वो देखने खुद ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो अनर्थ है उसको जब व्यक्ति मात करता है, उसके उसके ऊपर वो उठने की कोशिश करता है, तभी चरित्र को वो अच्छी तरह से ले जा सकता है। महान व्यक्ति बनने के लिए पहले उसे अनर्थों से निपटना होता है। तो यहाँ रामायण में श्री रामचंद्र के बारे में जब बताते हैं तो अलग अलग सद्गुणों का वर्णन करते हैं, जैसे कौशल्य, व्यक्ति भले शूरवीर हो खाली तलवार से नहीं, या खाली वो कितने लोगों का लोगों को मारता है, नष्ट करता है, वही नहीं, लेकिन वो क्या है, उसमें युद्ध कौशल कैसा है, साथ साथ खाली वेदों का अध्ययन नहीं, वो वेदों का अपने जीवन में कैसा व्यवहार करता है। दिव्यास्त्र उसके पास बहुत है, लेकिन वो दिव्यास्त्रों का अपने सत्कार्य के लिए कैसा उपयोग करता है, या उसको बोलना आता है लेकिन दीर्घ संभाषण ही नहीं, लेकिन वो बोलने से भले कम बोलता हो लेकिन उसकी भाषा कितनी मीत और अलंकृत अमृत बिंदु है उसके ऊपर डिपेंड। ये सारे ये बोलने का कौशल है, युद्ध का कौशल है, दिव्यास्त्र का यूज़ करने का ये कौशल है, लेकिन उसका जैसा हमारे पास अगर चाकू है तो उसका दोनों यूज़ होता है, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, किसी का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, किसी को जीवन दान दे सकते हैं, किसी को नष्ट कर सकते हैं। तो वैसे ये जो कौशल्य है उसके पास, साथ साथ उसका जो स्वभाव है, जो एटीट्यूड है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर उसका उसके पास बहुत सारा स्किल्स है, कौशल मतलब स्किल्स उसके पास है, लेकिन अगर एटीट्यूड सही नहीं है, तो हम अगर स्वीट राइस बनाते हैं, स्वीट राइस अच्छा है लेकिन उसमें शक्कर ही नहीं हो, तो स्वीट राइस का क्या स्वाद होगा। उसी तरह से उसके पास बहुत अच्छे स्किल्स है, अच्छा कौशल है, लेकिन स्वभाव ठीक नहीं है, कौशल्य एटीट्यूड अगर ठीक नहीं है, तो कितने भी स्किल्स अच्छे होंगे, कितने भी कौशल अच्छा होगा, लेकिन वो जो है लोगों का कभी भला नहीं कर सकता। वैसे श्री रामचंद्र इनका जो स्वभाव था, हमेशा वो जो वयोवृद्ध थे उनका सम्मान का, जो वयोवृद्ध है, ज्ञानवृद्ध है, शीलवृद्ध है, उनके प्रति हमेशा वो सम्मान करते थे, हमेशा उनको आदर करते थे, उनके प्रति कृतज्ञता रखते थे। और उनका जो चरित्र है, क्योंकि अगर उसके व्यक्ति पास स्किल है, स्वभाव है, साथ साथ क्या है, उससे क्या बनता है, चरित्र बनता है। अच्छा स्किल्स है और स्किल्स के साथ उसका एटीट्यूड स्वभाव अच्छा है, उससे व्यक्ति का चरित्र अच्छा बनता है। इस तरह से श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक का जब घोषणा होता है और दूसरे दिन सुबह करना है, और वशिष्ठ ऋषि को दशरथ महाराज कहते हैं जो भी आवश्यक है तपस्या करने के लिए आप श्री राम सीता को बता दो, और वशिष्ठ ऋषि वो बताने के लिए जाते हैं, उपवास रखते हैं। और अयोध्या में श्री राम दशरथ महाराज इतने प्रसन्न थे, और कभी कभी क्या होता है कि प्रसन्नता में व्यक्ति कुछ चीज़ें भूल भी जाता है, तो अपनों को ही कभी कभी इन्विटेशन देना, कुछ चीज़ों को बताना, कभी कभी व्यक्ति भूल जाता है, और व्यक्ति को लगता है कि उनको तो पता ही होगा। तो दशरथ महाराज जो है इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे, और सारे लोगों को बता रहे, लेकिन किसको बोलना भूल गए, कई कई को बोलना भूल गए, जो पटरानी थे। और ये चांस जो किसने उठाया, मंथरा ने उठाया। और मंथरा जब नीचे देख रहे कि कौशल्या बड़े दान धर्म कर रही है, लोगों को सोना चांदी सब बांट रहे हैं, और सारा नगर जो सजा रहे हैं, जो नव नई दुल्हन को जैसे सजाते हैं वैसे अयोध्या नगरी जो है सजाई जा रही है, और ये सब देखकर मंथरा आकर कैकेयी से कहते हैं, और कैकेयी क्या है, विश्राम कर रहे हैं। और मंथरा आकर उसे कहते कि मूर्ख कैकेयी, उत्तिष्ठ, उठ, तुमको पता नहीं कि तेरे बारे में क्या कट बनाया जा रहा है। ये दशरथ जो है राजा आता है और तुझे मीठी मीठी बातें बताकर जो है आपको तुझे रिझाना चाहता है, लेकिन तेरे पीछे क्या क्या कट करता है, देखो 15 दिन से राजाभिषेक की तैयारी हो रही है, आपको पता भी नहीं है। तो मंथरा यहाँ पर एक किस तरह से मिस अंडरस्टैंडिंग, व्यक्ति जो भक्तों के बीच में कैसा कभी कभी माया घुस जाते हैं, वैसे यहाँ पर मंत्र आकर और कैकेयी को जैसे बताते कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, इतनी खुश हो जाती कि अपने गले का एक सुंदर जो मौल्यवान हार जो है उसको निकाल कर देते हैं। तो मंथरा उसको कैकेयी के मन में कैसे नफरत निर्माण करनी है, तिरस्कार निर्माण करना है, उसके लिए इतनी योजना बनाती है। मतलब क्या होता है, कोई अच्छा बनना चाहता है तो भगवान उसे शक्ति बुद्धि सब कुछ देते हैं, और कोई बुरा बनना चाहता है उसे भी शक्ति बुद्धि सब कुछ मिलता है। तो मंथरा जो है किस तरह से कैकेयी को नफरत तिरस्कार उसके मन में निर्माण करना, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे। वो क्या करते हैं कि क्योंकि कैकेयी इतना श्री राम से प्रेम करते हैं कि जब भी श्री रामचंद्र कहीं बाहर से आते हैं तो कैके के महल में जाता है, और कैके जो रोज राजभोग आता है तो कैके निकाल के श्री राम के लिए रखती है, जब भी उड़ती है तो पहले श्री राम का नाम लेती है, तो उसको पता है कि श्री राम से इतना प्रेम करते हैं, फिर भी तो उसको अगर तिरस्कार निर्माण करना है तो प्रयत्न भी इतने जोर से करने होंगे, इसलिए मंत्रा क्या करती है, हार लेती है और जोर से फेंक देती है जमीन पे, और पूरे मणि उसके बिखर जाते हैं, और कहते हैं कि क्या मूर्ख है, तुमको पता नहीं है कि श्री राम का राज्याभिषेक अगर होगा तो क्या होगा, क्योंकि बोलते अरे क्या होगा, इससे अच्छा समाचार हो ही क्या सकता है, श्री राम से प्रजा इतनी प्रेम करते हैं और श्री राम भी प्रजा से इतना प्रेम करते हैं और वो मुझे अपने माता से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, कौन कहीं कहीं कहते हैं, तो मुझसे बुरा क्या होगा, बोलते वो ऐसा नहीं है, क्या होगा कि जब श्री राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बनेगी, और जब कौशल्या राजमाता बनेगी तो आपका स्थान जो अभी पट रानी का है वो द्वितीय स्तर पे आ जाएगा। आखिर क्या है आपकी, क्या बोलते हैं सवत को, क्या बोलते हैं को वाइफ सौतन, हाँ तो ये आपकी आखिर सौतन होगी, तो वो जो है कैके के मन में थोड़ा सा एक लोभ आ जाता है, देखो मतलब उस स्तर पे श्री राम से इतना प्रेम करते हैं, उस स्तर से भी कभी कभी व्यक्ति के मन में थोड़ा सा अगर अटैचमेंट आ जाता है कि अभी क्या उस स्तर का अटैचमेंट था, एक पद का अटैचमेंट है उसकी वजह से, और दूसरा एक गलती ये होता है कि जब मंत्रा बोलते जाते और वहीं से अगर बोलने के बाद उसको अगर अच्छा नहीं लगता तो वहीं से अगर भगा दिया होता तो कई कई इतने जंजाल में फंसती नहीं थी, लेकिन कई मंत्रा बोलते जा रहे, क्रिटिसाइज करते जा रहे और कई कई सुनते जा रहे, मतलब जब व्यक्ति कोई क्रिटिसाइज करता है, जब व्यक्ति कोई संस्था के बारे में वैष्णव के बारे में गलत बोलता है तो तुरंत अगर काट देते हैं ध्यायतु विषयां पुंसा, वही अगर ध्यान तुरंत काट देते हैं तो आगे संगासन जायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात बोधि सम्मो सुमात ब्रह्मा स्मृति प्रनशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रनशित होता ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा समय संग किया मंत्रा का, को क्रिटिसाइज कर रही है, वो निंदा करे दशरथ महाराज के, श्री राम की, कौशल्य की, ज़्यादा संग किया तो वो जाल में जो है कहीं कहीं फंस गए। तो ये जो माया के जो आमंत्रण है, निमंत्रण, वो आते रहेंगे, माया जो है हमेशा कोशिश करती रहेगी कि किस प्रकार से इसको माया के जाल में खींचना है। तो ऐसा नहीं कि संसार में ऐसे विषय आएंगे नहीं, ऐसे विचार आएंगे नहीं, लेकिन तुरंत कट करना ये अपने हाथ में होता है, जैसे कई कई न करने की वजह से कई मंत्रा के जाल में फंस जाते हैं, और वहाँ मंत्रा ही जब कई कई पूछते कि मुझे क्या करना होगा, फंस जाती है, वो कहते कि आपको याद नहीं, आपने जब महाराज दशरथ ये युद्ध कर रहे थे देवताओं की ओर से शत्रु के साथ, तभी उनका रथ का जो एक्सल था वो टूट गया था, तो आपने अपने एक उंगली से वो जो फील था उसको बचाया था, और उस तभी दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने कहा था कि आप वर मांगो, मैं इतना प्रसन्न हूँ, आपने मेरा मुझे जीवन दान दिया है। तो कई कई तभी इतने प्रसन्न थे तो उसने कहा कि आप सब कुछ मुझे देते, इतना प्यार देते, सब कुछ देते, मुझे क्या आवश्यकता है, कुछ ज़रूरत नहीं। फिर भी दशरथ महाराज कहते कि आग्रह करते हैं कि नहीं कुछ तो वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कई कई ठीक है, समय आने पर मैं मांग लूँगी, जब आवश्यकता होगी तो मांग लूँगी। तो मंत्र याद दिलाती, देखो वो जो दो वर थे वो दो वर मांग लो। बोले अच्छा, तो दो वर क्या मांगने, एक तो भरत को राजाभिषेक करना है, और भरत अगर राजा बनेंगे तो उनको पता है मंत्रा को, भरत इतना श्री राम से प्रेम करते हैं, राजाभिषेक अगर होगा तो भी वापस उनको दे देंगे, लेकिन श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो क्योंकि जब व्यक्ति अगर 14 वर्ष के पहले अगर आता है तो उस प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है। 14 वर्ष के बाद अगर आता है, गवर्नमेंट रूल है, वो 14 वर्ष तक अगर नहीं आता है, वो प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करता है, तो प्रॉपर्टी अनक्लेम हो जाती है। तो 14 वर्ष के लिए उनको वनवास भेजने के लिए बोल देते हैं। तभी और वो कोप भवन में जाते हैं कैकेयी, और कोप भवन में जब दशरथ महाराज प्रसन्न है, सब जगह जा रहे हैं, सब तैयारी देख रहे हैं, बड़े हृदय में प्रसन्न है, और अचानक जब कैकेयी के महल में आते हैं, थक कर आते हैं, और अचानक से देखते हैं कि कैकेयी कहाँ है, यहाँ राज आसन में देख रहे, यहाँ देख रहे, कहीं नहीं देख रहे। तभी अचानक देखते कि कोप भवन में वो काले वस्त्र पहनकर पूरा अलंकार यहाँ वहाँ फेंक कर और बाल जो यहाँ वहाँ बिखरे हैं, तो ऐसे अवस्था में कैकेयी को देखकर दशरथ महाराज को बड़ा दुख होता है कि इतनी खुशखबरी है, इतना आनंद का माहौल है, और यहाँ कैकेयी दुखी क्यों है? मेरे मतलब प्रियतम है, इतने प्रिय व्यक्ति है, और वो दुखी क्यों है? तो व्यक्ति क्या होता है, जब जब भी तो प्रसन्न होता है, क्योंकि इस संसार का नियम है, आप जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करो, सबसे ज़्यादा दुख भी उससे मिलता है। तो व्यक्ति जो है दशरथ महाराज सबसे ज़्यादा प्रेम कर, आपको श्री राम से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, फिर भी नेक्स्ट कैकेयी से प्रेम करते थे, और वही व्यक्ति जो है उनको जब वो दुखी है तो वो देखकर दशरथ महाराज जो हिल जाते हैं, और बोलते क्या क्या चाहिए आपको, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, अगर आप कहोगे तो जो जेल में उनको छुड़ा सकता हूँ, किसी को जिसको फांसी नहीं देना उसको फांसी दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, किसी राज को अगर अपने कब्जे में है उसको छुड़ा सकता हूँ। तो इस प्रकार से तो तभी इस कई कई जो है ऐसा माहौल बनाते हैं, ऐसा तुरंत बोलने बोलती नहीं है, तो कई समय तक वो रुक के रहते रहते, फिर बाद में कहते कि मुझे पता है कि आप मानोगे नहीं, मुझे पता है आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, अगर प्रेम करते हैं तो मेरी बात आप मानोगे। तो इस प्रकार से पूरे अपने जाल में फंसा लेती है, और कहते हैं कि मुझे आपने जो वर मांगने के लिए कहा था वो 2 वर मुझे वापस चाहिए। बोले कि क्या? बोले भरत का राज्याभिषेक और श्री राम को वनवास। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि भरत का राज्याभिषेक एक बार और ठीक है, श्री राम भी इतना प्रेम करते, भरत भी एक दूसरे जितना प्रेम करते, अगर आप राज्याभिषेक भरत का कहो तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन राम को वनवास क्यों, क्या आवश्यकता है, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। अलग अलग प्रकार से वो समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो मानते नहीं हैं। और यहाँ पूरी रात जो है दशरथ महाराज वही है, रो रहे हैं, उसके पैर पकड़ रहे हैं कि कुछ भी करके ये मत मांगो कि राम को वनवास भेजना है। अंततः सुबह होती है, प्रातः काल में श्री राम उठते हैं, पूजा विधि सब करते हैं, और दशरथ महाराज को देखने जाते, दशरथ महाराज अपने महल में नहीं है। तभी कई कई सेवक को भेजते कि जाओ श्री राम को बुलाओ, और श्री राम जब निकलते हैं तो सारे प्रजाजन उनको कुछ भी पता नहीं, श्री राम को भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, तो बड़े रथ के सज धज के रथ के ऊपर जा रहे हैं, और सब प्रजा प्रसन्न है कि चलो श्री राम आज राज्याभिषेक होने वाला है, सब अलग अलग प्रकार के मंत्रणा करते हैं, बातचीत करते हैं। जब श्री रामचंद्र वहाँ पहुँचते, वो दशरथ महाराज की अवस्था देखकर वो भाप जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, अदरवाइज इतने खुशी के समय मेरे पिताजी इतने मुझसे प्रेम करते हैं, जो उन्होंने खुद होकर जो घोषित किया है, ऐसे दुखी कैसे हो सकते हैं। तभी श्री रामचंद्र वहाँ जाते हैं, पिताजी से पूछते कि क्या बात है, क्यों आप इतने दुखी, और माता को क्या हुआ है, सब बातचीत होते हैं। तभी दशरथ महाराज खुश भी नहीं बोल पाते हैं, तो कैकेयी कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मुझे ये वर दिए हैं, 2 वर दिए हैं, भरत का राज्याभिषेक और आपको 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है। तो श्री रामचंद्र इतने धीर पुरुष हैं, इतने धीर पुरुष कि उनके जो कपाल है, एक आंठी भी जो है उनके ऊपर, एक टेंशन का एक रेखा भी जो है उनके चेहरे पे आती नहीं है, या थोड़ा सा भी सुख दुख के समय कृत्वा, इस प्रकार से श्री रामचंद्र है ऐसे मुद्रा में रहते हैं। तो वो कहते, श्री रामचंद्र कहते कि इतनी सी बात है उसके लिए पिताजी को इतना दुखी होने क्या आवश्यकता है। माता, अगर आपने खुद अगर बोल दिया होता ना, ये वचन लेने से पहले अगर बोल दिया होता कि भरत मेरे आत्मा की तरह है, मेरे जीव की तरह है, मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और पिता की आज्ञा के लिए तो मेरे प्राण के समान है, इस प्रकार से वो उनको कहते हैं। और दशरथ महाराज कहते कि नहीं श्री राम, नहीं, आप मुझे ये तलवार लो और मुझे खत्म कर दो, लेकिन अब बंद करो। कौन? दशरथ महाराज कहते, लेकिन ये मेरी जो आज्ञा है उसको मत मानो। दशरथ महाराज खुद वहाँ कहते हैं, और जैसे धीरे धीरे बात जो है बाहर फैलने लगते हैं, फिर श्री रामचंद्र जाते हैं, माता कौशल्या को समझाते हैं, सीता को समझाते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं। इस माता खुश लगती, मुझे आप ले चलो, मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकती हूँ। फिर सीता से कहते हैं, तो सीता कहते हैं कि मैं अर्धांगिनी हूँ, मेरे पिता ने मुझे आपके साथ रहने के लिए दिया है, अगर आपके बिना जो राजमहल जो है स्मशान की तरह होगा, ये जो गालीचे है, जो गद्दी है, सब जो है राजमहल के जो सुख है, ये कांटे की तरह मुझे चुभने वाले हैं, तो मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकते। तो इस तरह से श्री राम फिर भी कहते हैं कि नहीं, जो वहाँ पर बहुत भयंकर जानवर होते हैं, कांटे होते हैं, आप नहीं वहाँ रह पाओगे। तो माता सीता जो आखिरी बाण चलाती है, वो कहते कि मैंने मैंने सोचा था कि मेरे पिता ने मुझे किसी शूरवीर को दिया है किसी अच्छे बड़े शौर्यशाली व्यक्ति को दिया है, लेकिन आप तो मुझे वन ले जाने के लिए डर रहे हो। तो आखिर श्री रामचंद्र मान जाते हैं, फिर लक्ष्मण से मिलते हैं। लक्ष्मण कहते, नहीं कुछ भी हो, मैं अभी जाकर दशरथ महाराज को वध कर देता हूँ, सारी सेना को मैं खत्म कर देता हूँ, आप राजा बनो। तो श्री रामचंद्र कहते कि ये हमारे पूर्वजों के, न तो हमारे माता पिता के संस्कार है, ये नहीं करना है। इस प्रकार समझाते हैं। फिर श्री राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वहां जाते हैं, और सुमंत्र जब देखते हैं, इतना उनके जो अष्टमंडल है उसके वो नेता है, लीडर है, और सारे मंत्री जो उनको सुमंत्र को खास करके विशेष मानते हैं, और वो खाली दशरथ महाराज के मंत्री नहीं थे, उनके मित्र भी थे सुमंत्र। तो वो कई कई से कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतने नीच स्तर पे आप कैसे जा सकते। और फिर कहते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है, आपके माता के गुण ऐसे ही थे, क्योंकि आपके जो पिता थे अशोपति, जो उन्होंने उनको एक साधु ने वर दिया था और कहा कि आप किसी भी पक्ष की बोली जान सकते हो, अशोपति को वर दिया था, लेकिन अगर आपने बोल दिया कि मुझे कैसा है मैं जानता हूँ, ये बोली क्या बोल रहे, अगर बोल दिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक बार ऐसे उनकी माता और कई कई माता और पिता बैठे थे, और वो जो है उनको पूछ रहे कि जो पक्षी बोल रहे, तो उनके हाव-भाव से पहचान गए कि इनको ये बोली समझ रहे हैं। तो माता जो है कह कह के कहते कि नहीं, आप मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं। तो बोलते मैं नहीं बता सकता। बोले कि नहीं मुझे बताओ। हट पकड़ने लगे, बोलते कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरी मृत्यु होगी। तो कहते कि ठीक है लेकिन मुझे बताओ तो उन्होंने बताने के बाद भी वो कहते कि नहीं मुझे बताओ। और आखिर जब जैसे उन्होंने बताया कि ये पंक्षी क्या बोल रहे, उनकी मृत्यु हो गई। तो सुमंत्र कहते हैं कि आपके माता के गुण ऐसे थे कि जिससे अश्वपति ने पत्नी का, अफकोर्स तभी जैसे ही पता चल गया अपनी मृत्यु के लिए भी तैयार हो गई है, तो उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया था। जैसे कोई माली होता है जो आम का पेड़ लगाता है, लेकिन अगर कोई आम की जगह नींबू का पेड़ लगाता है और नींबू के पेड़ को दूध डालता है रोज और कहेगा कि आम आना चाहिए, तो इसी जगह पर ये आम नहीं आ सकता, नींबू ही आ सकता है। वैसे आपके जो जो गुण आए हैं, भले आप ऐसे स्तर पे है, ऐसे जगह पर है, लेकिन आपके जो अंदर पहले से जो गुण है, अवगुण है, यहाँ कितने भी अच्छे संस्कार मिले, दशरथ महाराज कौशल है, ऐसे स्तर पे आपके जो बुरे गुण है वही बाहर आते हैं। फिर वशिष्ठ ऋषि जब देखते हैं कि वो माता सीता को जो वृक्ष के जो पत्ते, उसके जो कपड़े पहनाने के लिए वल्क जो नारायण के लिए बोलते हैं, तो कई कई को वशिष्ठ ऋषि चिल्लाते हैं, डांटते हैं, लेकिन तू आप कितनी मूर्ख हो, ये सीता रघुकुल की कीर्ति है, ये राज लक्ष्मी है, और आप अगर इस प्रकार से उनको ऐसे वेदना देगी तो कृपा करके कम से कम सीता के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। श्री राम है, लक्ष्मी, राजकुमार है, लेकिन सीता के साथ, ये राज लक्ष्मी, इसके साथ तो कम से कम आप ऐसा व्यवहार मत करो। और अलग अलग प्रकार सब लोग उनको डांटते, लेकिन कई कई जो इतने दृढ़ थे अपने स्वभाव में, को टस मस नहीं हो रहे थे। और आखिर श्री राम जब रथ निकलता है, वहाँ जो दशरथ मार की जो दशा हो रही थी वो देख नहीं पा रहे थे, इतनी बुरी अवस्था थी। तो जैसे वो निकलते हैं, उनको पता था कि जितना मैं रुकूंगा उतना दशरथ महाराज ज़्यादा तकलीफ में होंगे। तो रथ जब निकलता है तो सुमंत्र को श्री राम कहते हैं कि आप निकलो, रथ जोर से, क्योंकि दशरथ महाराज रथ के पीछे भाग रहे थे, गिर रहे थे, फिर वापस उठ रहे थे, फिर भाग रहे थे। इस प्रकार से देखकर ये अवस्था को श्री राम देख नहीं पा रहे थे। तो सुमंत्र कहते थे आप भगाओ, तो और यहाँ दशरथ महाराज कह रहे थे कि आप सुमंत्र रथ को रोको, और श्री राम कह रहे कि रथ को भगाओ, ये राजा है, ये राजकुमार है, किसका सुने। तो श्री रामचंद्र सुमंत्र से कहते कि आप झूठ बोलो। जब दशरथ महाराज, सुमंत्र को पता कि मुझे वापस आके इनको जवाब देना है, तो श्री राम कहते कि आप झूठ बोल दो कि मुझे सुना नहीं, करके रथ की पहिया का आवाज़ आ रहा था, मैंने सुना नहीं कि आप रोकने के लिए बोल रहे थे। तो श्री राम कहते आप झूठ बोलो, लेकिन वो क्या चाहते थे, झूठ बोलने के लिए कह रहे थे, क्योंकि इससे दशरथ महाराज की वेदना जो है कम होगी। बोले वैसे सच बोलना एक पुण्य होता है, झूठ बोलना है पाप होता है, कि दूसरों को दुख देता है। लेकिन इस संसार में दो प्रकार के सत्य हैं, एक है संबंधित सत्य और दूसरा है परम सत्य। और जो संबंधित सत्य है हमेशा बदलते रहता है। जैसे दशरथ महाराज संबंधित सत्य उसका रक्षण करने के लिए परम सत्य का त्याग कर रहे थे। जो संबंधित सत्य क्या था, कहीं कहीं को उन्होंने वर दिए थे, उसका रक्षण करना था, वो संबंधित सत्य था। लेकिन वो संबंधित सत्य को रक्षण करने के लिए वो परम सत्य जो था, श्री राम को त्याग करना पड़ रहा था। वही जब वसुदेव एक कंस के साथ, वो संबंधित सत्य जो थे उसके बारे में झूठ बोल रहे थे, और उससे क्या हुआ, उन्होंने कृष्ण को बचाया। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज के द्वारा क्या, अयोध्यावासी श्री राम सबको दुख हो रहा था, लेकिन श्री राम जब असत्य बोल रहे थे कि आप बोल देना कि पैर की आवाज़ आ रही थी, मैं सुन नहीं पा रहा था, वो झूठ बोलने के लिए कह रहे, लेकिन उससे क्या था, वो दशरथ महाराज की वेदना को कम करना चाहते थे। इस प्रकार से पूरी अयोध्या जो है शोक सागर में डूब जाती, और पूरा अयोध्या नगर जो है श्मशान जैसे लगने लगता है। और जब धीरे धीरे रथ जो है तमसा नदी के किनारे पहुंचता है, वहाँ रात को लोग सब सो जाते हैं, और सब प्रजा जो है, कोई प्रजा जो यहाँ रहना ही नहीं चाहते, बोलते हम कह कह के भरत के राज में रहना ही नहीं चाहते, हम आप जहाँ भी वन में रहेंगे आपके राज में हम लोग रहेंगे। तो सब सारा अयोध्या जो है नगर खाली हो जाता है, और वहाँ तमसा नदी के किनारे सब लोग रात को सो जाते हैं। तो श्री रामचंद्र सब लोग उठने से पहले प्रातः काल में जल्दी उठकर सुमंत्र और रथ को लेकर पानी में से किनारे से रथ को निकाल देते, ताकि प्रजा को पता नहीं चले कि रथ कहाँ से गया, ताकि वो लोग पीछे भाग के आएंगे, ये पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए वो निकल जाते। इसलिए कहते हैं कि ग्रेट सोल्स ट्रिक फॉर ग्रेट कॉज, जो महान व्यक्ति होते हैं कभी कभी बड़े चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कभी कभी लोगों को ट्रिक करते, फंसाते हैं, तो उनका दुख कम करने के लिए श्री रामचंद्र इस प्रकार से उनको बताए बिना ही निकल जाते हैं। फिर कौशल प्रांत वहाँ सीमा पे पहुँचते हैं, अपने मातृभूमि को प्रणाम करते हैं, गंगा के किनारे वहाँ प्रवेश करते हैं, वहाँ श्रृंगेरपुर जहाँ अपने विशेष मित्र गुहा वहाँ मिलते हैं। और दूसरे दिन जब वो रात को रुकते हैं, श्री रामचंद्र माता सीता सब जो घास की सैया है उस पर शयन करते हैं। दूसरे दिन जब वो गंगा को क्रॉस करते हैं, गंगा के को क्रॉस करते समय वहाँ का जो नाविक होता है वो श्री रामचंद्र को बोट में बैठने नहीं देता है। वो कहता है कि नहीं, आप इसमें नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? तो गुहाक और सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या ये क्या बता रहे। बोले कि नहीं, इनके चरण को बहुत अच्छी तरह से धोना होगा, क्योंकि इनके चरण की जो रज है इसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि पत्थर को भी आदमी बना देते हैं। तो इन्होंने जो शिला थे उसको स्पर्श किया चरणों का, और वो अहल्या बन गए। जब विश्वामित्र के मुनि के साथ जब जा रहे थे तो जो शिला थी वो अहल्या बन गए। तो अगर ये मेरे नाव है, इनके चरण स्पर्श हो जाएंगे, तो वो अगर एक स्त्री बन गई तो पहले से घर पे स्त्री है, और दूसरी आ गए तो मैं कहा क्या करूँगा, इसलिए उनके चरण को अच्छा धोना होगा। तो श्री रामचंद्र को भी मानना पड़ता है, और वो उनकी पत्नी पानी लेकर आती है और इतने घिस घिस कर भगवान श्री रामचंद्र के चरण को धोते हैं, और माता सीता जो है देखते रहते, क्योंकि ये जो नाविक था ये पिछले जन्मों में एक कछुआ था। और जो भगवान श्री रामचंद्र भगवान विष्णु अनंत शेष पर जब विराजमान रहते हैं तो हमेशा कछुआ जो क्या करता था, वो भगवान श्री रामचंद्र के चरण जो ऐसे गुलाबी कलर के होते हैं तो उसको स्पर्श करना चाहता है कछुआ। लेकिन ये लक्ष्मण जो अनंत शेष के रूप में जो उसको हमेशा फुत्कारते थे, वो माता सीता जो है उनको लगता है शायद भगवान विष्णु के चरणों को कुछ दुख हो सकता है। तो लेकिन ये दोनों इस बार जो है देख रहे हैं और खुशी से भगवान के चरणों को धोते हैं, और उसका चरणामृत पीते और नाचने लगते हैं भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम स्मरण में, इस प्रकार से। और कुछ तो उनको भेंट देनी चाहिए, इसलिए माता सीता अपने अंगूठे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी कभी किसी से कुछ फ्री नहीं लेते थे। जैसे परम पूज्य राधा स्वामी महाराज का एक नियम है कि कहीं भी हम जाते हैं तो किसी से भी फ्री सेवा नहीं लेना चाहिए, फुकट में कुछ लेना, कुछ ना कुछ उसे हमें, बड़े स्पिरिचुअल हो मटेरियल, कुछ ना कुछ हमें उसे वापस देना चाहिए, फ्री हमें नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र तो जैसे ही वो नाविक ले आता है और जो नीचे उतरते हैं तो श्री रामचंद्र यहाँ वहाँ देखते हैं, क्योंकि खाली अभी तो जटा भी बांध के रखे थे और खाली एक साधु वस्त्र थे, कुछ था नहीं, तो यहाँ तो सीता जान जाते कि कुछ तो इनको देना है उन्हें। तो माता सीता क्या कहते हैं, अंगूठी निकाल कर उनको देती है। तो वही अंगूठी जो है वो जब देने जाते हैं नाविक को तो वो लेता नहीं, बोले नहीं, आपकी कृपा मिल गई, आपके चरणों की सेवा मिल गई, बस और कुछ नहीं चाहिए, वो लेता ही नहीं है। तो अंगूठी श्री रामचंद्र अपने पास रख देते हैं, और अंत में जब हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में तो वही अंगूठी जो है हनुमान जी को श्री रामचंद्र देते हैं, उनके पास कुछ था नहीं, यही अंगूठी बची थी जो रखाई थी उन्होंने अपने पास, वही अंगूठी जो है फिर हनुमान जी को देते हैं, और हनुमान जी अशोक वाटिका में वो अंगूठी ले जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ जब ये बोट क्रॉस करके जाते हैं, फिर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, वहाँ से फिर चित्रकूट चले जाते हैं, और यहाँ अयोध्या में जब ये वापस आते हैं सुमंत्र, तो उनका जो घोड़े हैं वो भी वापस नहीं आना चाहते हैं। वो आंसू बहाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रथ को वापस अयोध्या में ले ही नहीं जाते हैं। तो जबरदस्ती करके वो रथ को ले जाते, तो वो खुद ही सुमंत्र ही जान नहीं पा रहे थे क्या सही अयोध्या, क्योंकि हर बार जब आते थे इतना जल्लोष होता था, उतने उनके सिक्योरिटी होता था, इतना उनको अच्छा, क्योंकि राजा का रथ है, इतना उनका अच्छा स्वागत होता था। लेकिन जब ये देखा तो पूरा श्मशान में जैसा अयोध्या था, वो गेट कभी आया गेट के अंदर वो कभी चले गए वो पता ही नहीं चला उनको। और जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो सब लोग समझ गए कि सुमंत्र का जो चेहरा था, हाव भाव थे पूरी तरह से नीचे गिरे हुए थे, पूरा उदास थे। तो वशिष्ठ मुनि समझ गए कि श्री राम वापस नहीं आए हैं, प्रजा भी समझ गई। और दशरथ महाराज जो है वहाँ उनको पूछते हैं सुमंत्र को कि मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने जो वन का जो वनवास है उसकी उनको आदत हो गई क्या, उनको वो कैसे सहन कर पा रहे हैं, और सीता भी साथ में गई है, कम से कम सीता को तो पश्चाताप हुआ होगा क्यों मैंने डिसीजन लिया वन में आने का, क्योंकि यहाँ इतने कांटे हैं, इतने तकलीफ है, क्यों मैं आ गई, कम से कम वो तो वापस आनी चाहिए थी। तो सुमंत्र कहते कि श्री राम एक क्षण के लिए भी धर्म से विचलित नहीं हुए। और वो कहते हैं कि तो जैसे ही उन्होंने सुना दशरथ महाराज ने कि धर्म से विचलित नहीं हुए श्री राम, दुखी भी हुए साथ साथ उनको प्रसन्नता भी हुई कि राम जो है धर्मात्मा है, किसी भी स्तर पे हो अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे। और फिर श्री राम की एक ही अपेक्षा है क्या कि दशरथ महाराज से वो कहते हैं कि श्री राम की एक ही अपेक्षा है कि आप कौशल्य की अच्छी तरह से केयर करो, अच्छी तरह से उसका ख्याल रखो। फिर राम कौशल्य से कहते हैं, सबके लिए वो संदेश भेजते हैं, तो कौशल्य से संदेश भेजते हैं कि आप मंदिर में जो आपके विग्रह है उसकी अच्छी तरह से सेवा करो, और ख़ास करके पति आपके जो है बहुत दुखी है, बहुत शोक में है, उनको आपकी बहुत आवश्यकता है, कृपा करके उनका ध्यान रखना, उनका आदर करना। भले कुछ निर्णय में अगर आपको लगता है वो गलत है, लेकिन फिर भी आप उनका सम्मान रखो, उनका आदर करो। और साथ साथ राजा भरत अगर राजा होता है उसका भी, जैसे अगर मैं ही राजा होता कैसे सम्मान करते, वैसे आप राजा भरत का भी सम्मान करो इस तरह से। और भरत से वो संदेश भेजते भरत के लिए कि आप जो शास्त्र के अनुसार राज्य करो, क्योंकि राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है। और लक्ष्मण जो है दशरथ महाराज के लिए संदेश भेजते हैं, वो कहते हैं कि मैं राजा को कभी क्षमा नहीं करूँगा। श्री राम का संदेश जो है, लक्ष्मण का संदेश जो है, इसमें फर्क है। और कहते कि राजा की मूर्खता की वजह से कई कई ये जो इतना भयंकर दुख जो है और प्रजा के लिए श्री राम के लिए दे पा रही है, क्योंकि राजा की मूर्खता की वजह से है। और वहाँ कौशल्य जो है वो सुनकर दुखी होते, कहते कि जो सीता है ये फूल की जो पंखड़ी होती कैसे कोमल होते, वैसे सीता कोमल है ये तो ठीक है राजकुमार, लेकिन सीता के बारे में सोचकर कौशल्य रोने लगती, उसको विरह की वेदना होती है। और वहाँ कौशल्य जो है वहाँ अभी देखिए, कौशल्य खुद का आनंद को त्याग करती है और कई कई खाली अपने खुद के आनंद के बारे में सोचती हैं। और यहाँ सुमंत्र कहते हैं कि सीता जो है जैसे बगीचे में लोग जब घूमते हैं तो कैसे प्रसन्न रहते हैं, सीता भले वन में भ्रमण कर रहे हैं लेकिन श्री राम के साथ होने की वजह से ऐसा लगता था कि जैसे कोई बगीचे में भ्रमण कर रहे हैं, इतने वो प्रसन्न, क्योंकि सुमंत्र को पता था कि जितना मैं वहाँ की कुछ वेदनाओं के बारे में बताऊंगा तो और ज़्यादा दुख होगा। और यहाँ कौशल्या दशरथ महाराज को डांटने लगते हैं और कहते कि आप कैसे पति हो, मेरे दोनों चीजों को आपने छीन लिया है। मेरे पास पति है लेकिन उसका मन यहाँ नहीं है। पति और पुत्र के ऊपर श्री का अवलंबन होता है, और मेरे पास पति है लेकिन उसका मन यहाँ नहीं है, उसका मन राम के साथ चला गया है। और मेरे पास पुत्र है, उसका मन इधर है लेकिन पुत्र दूर चला गया है। दोनों मेरे अपने जो है आश्रय स्थान जो है दोनों अपने रे छीन लिए हैं और मुझे पूरी तरह से अधमरा कर दिया है। और फिर वापस दशरथ महाराज से कौशल माता कौशल कभी इतनी सोज्वल और इतना उनका धैर्यशील थी, कभी वो दशरथ महाराज अभी तक कभी उन्होंने शिकायत नहीं की थी, लेकिन इतने वेदना थे कि इस बार उसका भी जो मर्यादा थी वो टूट गए थे। इतनी वेदना भगवान श्री राम के विरह में उतनी दुखी थी, इसलिए वो डांटती है और फिर वापस दशरथ महाराज के चरणों में गिरकर वापस क्षमा मांगती है। तो कभी कभी अगर ऐसा होता भी है, कभी व्यक्ति डांट देता है अपने वरिष्ठ को या कभी कुछ बोल देता है, लेकिन तुरंत उसे क्षमा याचना करने का भी अधिकार होता है या उसे करना भी चाहिए, हो सकता है। तभी दशरथ महाराज जब देखते हैं कि कौशल्या बहुत कष्टी है, तो वो अपने जीवन का वर्णन करते कि देखो ये जो भी होता है कर्म का फल होता है, मैं इतना दुखी हूँ, मेरा पुत्र से जो वियोग हो रहा है ये भी मेरा कर्म का फल ही है। और दशरथ महाराज फिर वो स्टोरी बताते हैं कैसे एक बार वन में भ्रमण करते मैं जब शब्द विधि बाण जब चला रहा था तो मुझे लगा कि कोई हाथी बाघ जो है पानी पीने आया है, लेकिन जब जैसे बाण मारा तो वहाँ एक मानव एक व्यक्ति चिल्लाने का मरने का जब वो आवाज़ आया तो मैं भाग भाग कर जब वहाँ गया तो एक्चुअली पानी कोई हाथी या बाघ ने पी रहा था, वो घड़ा था, वो डुबाते समय आवाज़ आया और वो जो बाण मैंने चलाया वो किसी प्राणी को नहीं लगा, व्यक्ति को लगा, वो था श्रावण बाल। और वही जब उसको मैंने पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इतनी वेदना हो रही थी बाण छाती में था, अगर उसका बाण निकाला तो मृत्यु हो जाएगी, बाण अंदर है तो वेदना होगी, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसकी वेदनाओं को कम करने के लिए बाण जब जैसा निकला तो उसके पहले उसने बताया कि देखो मेरे अंध माता पिता हैं यहीं पास में हैं, उनको आप जल लेकर जाना। और जैसे माता पिता के पास जल लेकर जाते हैं वो उनके आवाज़ से पहचान जाते हैं कि मेरा श्रावण नहीं है, तो पूछते कि आप कौन हो। तो दशरथ महाराज को पता था कि अगर मैं झूठ बोलो तो भी अपने जीवन में गिर जाऊंगा, सत्य बोलना। तो उन्होंने कि मैं ऐसे से मेरे से गलती हो गई, आपके बेटे को मेरे से बाण लगा, तो जब जैसे ही बोलते हैं तो इतने दुखी हो जाते और वो शोक में पुत्र शोक में वो शरीर छोड़ते। शरीर छोड़ने से पहले दशरथ महाराज को वो मृत्यु के समय जो जब भी कभी अगर कोई श्राप दे देता है और उसके बाद में उसकी क्षमा याचना कर सकता है, लेकिन यहाँ जस मृत्यु से पहले वो श्राप दे देते हैं कि जैसे पुत्र योग में हम मर रहे हैं वैसे आप भी पुत्र योग में आपकी मृत्यु होगी। तो दशरथ महाराज को स्मरण होता है और फिर वो कौशल्य को स्टोरी बोलते हैं और वहाँ शरीर छोड़ देते हैं, उनका ध्यान होता है। और जैसे वशिष्ठ ऋषि को पूरा कारोबार संभालना पड़ता है, वो तुरंत कई कई देश के लिए संदेश भेज देते, 5 दिनों में पहुंच जाते हैं, 8 दिन में वापस आते, तब तक तेल के नाव में दशरथ महाराज का शरीर रखते हैं। और जैसे वहाँ ये पहुँच जाते हैं भरत महाराज, तो भरत महाराज को पहले ही स्वप्न में पता चल जाता है कि कुछ तो अशुभ हो रहा है, कुछ तो यहाँ, क्योंकि उनको सपना गिरता है कि दशरथ महाराज कोई बड़े कटरे से नीचे गिर रहे हैं, दलदल में गिर रहे हैं, उनको घोड़े पे गधे पे बिठाया जा रहा है, तो ये सपनों देखकर कुछ तो अशुभ होने वाला पहचान जाते हैं। और जैसे संदेश आता है तो जल्दी में निकल जाते हैं। और जैसे यहाँ पहुँचते हैं तो वो जो अयोध्या नगरी हमेशा इतना प्रसन्न वातावरण होता था, ये सब वहाँ दिखता नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है, समझ जाते हैं। और वहाँ वैसे कई महल में पहुँचते तो कई कई सामने आते हैं, तो हमेशा श्री राम उनको कहीं बाहर से आते तो श्री राम मिलने आते हैं, दशरथ महाराज आते हैं, लेकिन इस बार कोई नहीं आया है। क्यों नहीं मेरे भैया, क्यों नहीं मुझे मिलने नहीं आए गए? तो कई कई से पूछते हैं, तो लेकिन पिता कहाँ हैं? तो कहते हैं कि जहाँ सारे जीव जाते हैं वहीं वो चले गए हैं। वो क्या है, भगवद गीता का तत्व ज्ञान बोलते हैं कि हर जीव को जो है अंततः जाते से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से कहीं जो आया है उसको जाना ही है, जो गया है उसको वापस आना ही है। तो लेकिन जो तत्व ज्ञान है हम कब बोलते हैं, किसे बोलते हैं और कौन बोलता है, कौन सी भावना से बोलते हैं, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे क्योंकि अर्जुन मोहित हुए थे, लेकिन कैकेयी जब बोल रही है तो वहाँ पे भरत मोहित नहीं है, वो दुखी है। दुखी अवस्था में जब ऐसे ये चीज बोलना जो है उसको व्यक्ति समझ नहीं सकता है। तो यहाँ अर्जुन दुख से बाहर आते हैं और ये सुनकर भरत और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो कौन कौन बोलता है, कैसे स्वभाव से भावना से बोलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भरत कहते हैं कि मैं कितना दुर्भाग्य हूँ कि जब मेरे पिता शरीर छोड़ रहे थे तो मैं यहाँ नहीं था, जोर मेरे भैया श्री राम यहाँ होंगे और उन्होंने अंत संस्कार किए होंगे, उन्होंने वहाँ उनको संभाला होगा, तो मेरे पिता अंत तक अंत में क्या बोल रहे थे वो पूछते हैं। तो कह के कहते को हे राम, हे राम, वही तो बोलते राम तो वही थे, फिर वो राम क्यों बोल रहे थे? नहीं, आपके भैया राम भी वहाँ नहीं थे। बोले वो कहाँ है? बोले वो तो वनवास चले गए हैं। तो कहीं कहीं एकदम आसानी से ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। मतलब वहाँ एक तो उनको शौक था कि पिता चल बसे, बस दूसरा शौक जो है कि श्री राम जो उनके प्राण हैं वही अभी वहाँ नहीं है, वो भी वनवास चले गए, तो किसके सहारे मैं जीऊँगा? भरत वो कहते हैं, तो जब वो कहते हैं कि देखो भरत, ये सब अभी छोड़ दो, पिता का अंत्य संस्कार करो और आप राजा बनो। तो क्या मैं राजा बनूंगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपना जो रघुवंश है उसमें जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है, और आप कहते हैं कि मुझे मैं राजा बनूं, और आप तो कैकेयी देश से हैं, ये कैकेयी जो नाम है कैसे आया? कुकु से आया, कि वहाँ पे बहुत मोर होते हैं, जो बहुत पिकॉक्स वहाँ पे होते हैं, इसलिए उस देश का नाम कुकु से कैकेयी पड़ा है। और मोर का जो वंश होता है, पिकॉक का जो वंश होता है, उसमें सबसे पहला जो जन्म लेता है पिकॉक, उसके ऊपर तुरा होता है, उसके बाद जो बच्चे आते हैं उनके ऊपर तुरा नहीं होता है, तो बड़ा जो होता है उसका राजा अभिषेक होता है। तो ये रघुवंश आपको, आप तो जानते, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो कहते हैं कि आप तो सुमुखी हो, आप सुखमुखी थे, मतलब सुखी, सुमुखी मतलब जैसे सुबह उठते थे पहले वो राम का दर्शन करते थे, इसलिए आप सुमुखी थी, सुलोचनी थी, हमेशा श्री राम का वर्णन करना, यही आपका, इससे आपको आनंद मिलता था। लेकिन वो कहते कि अगर श्री राम से इतना प्रेम करते थे, आपको क्या हो गया कि आपको, आपने श्री राम को वनवास दे दिया? और यहाँ कहते कि इक्ष्वाकु वंश में ऐसा कभी हुआ नहीं है। इस प्रकार से कैकेयी को बड़े प्रताड़ते हैं, समझाते हैं, लेकिन जैसे तभी कैकेयी का आंखें जो है खुल जाती कि मैंने गलत कर दिया है। भरत के जीवन में भी जब वो कैकेयी को बोलते हैं, इतना शौक हुआ, दुख हुआ, फिर कौशल, माता कौशल को मिलने जाते हैं। माता कौशल को जैसे मिलते हैं तो माता कौशल कहते कि हे भरत, अभी तो तुम राजा बन गए हो, अच्छे से भोग करो, लेकिन एक काम करो कि मुझे कृपा करके श्री राम के पास वनवास वन में भेज दो, मैं वहाँ अपने पुत्र के साथ आनंद से रह सकते हूँ। तो भरत जैसे माता कौशल्या बोलते कि आप तो अभी राजा बन गए हो, आप तो अभी सुख का भोग करोगे, तो बोलते कि ऐसे कैसे बोल सकते कि माता कि श्री राम के बिना मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ भरत जा रहे थे, वशिष्ठ ऋषि दूसरे दिन ही उनको जब अंत्य संस्कार होने के बाद सारे नगाड़े लेकर उनको सुबह उठाने जाते हैं और कहते कि भरत अभी तुम राजा बनो, तुम सारा कारोबार संभालो। तो भरत कहते हर जगह पे उनको परीक्षा देने पड़ रहे थे। मतलब कोई अगर कोई कार्य कर निकलता है और हर पल पग पे जो है उनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग, कौशल्या को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वशिष्ठ ऋषि जो है मिसअंडरस्टैंड करते कि नहीं भरत को शायद राजा बनना होगा। वहाँ आगे जाते भरद्वाज मुनि वो मिसअंडरस्टैंड, गुहाग मिसअंडरस्टैंड करते, हर जगह जहाँ जहाँ भरत जाते हैं वहाँ पे उनको मिसअंडरस्टैंड अपने बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग उनको झेलनी पड़ती है। तो साधक के जीवन में भी कभी कभी कोई वरिष्ठ होते हैं वो भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंड करते हैं, अपनी गलती नहीं है फिर भी उसको गलत समझते हैं, फिर उसको कैसे अपने तत्व में अपने दृढ़ता में, व्यक्ति अगर दृढ़ है अपने इंटेंशंस अपने भावों के प्रति अगर व्यक्ति दृढ़ है तो बाहर कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कितने भी उसके बारे में अगर गलत समझा जाता है, लेकिन परमात्मा वापस उनको समझा देते हैं कि नहीं ये गलत नहीं है, समय का धुरी होती है लेकिन वापस व्यक्ति समझ जाता है। तो वैसे फिर वशिष्ठ मुनि को मना कर देते हैं और फिर पूरा जो भी राजा अभिषेक के लिए सब सामग्री इकट्ठा की थी वो सारी सामग्री को भरत महाराज जो प्रदक्षिणा करते हैं और कहते हैं कि ये सारे हम लोग कहाँ ले जाएंगे, चित्रकूट में ले जाएंगे और श्री राम का वहाँ अभिषेक करके वापस हम उनको राज सिंहासन पर लाकर यहाँ बिठाएंगे और पूरा राज प्रजा सैन्य सब कुछ लेकर वो चित्रकूट में पहुँचते और वहाँ को पता है किस प्रकार से वहाँ भरत मिलन इतना सुंदर प्रसंग है, वो प्रसंग वहाँ पर होता है, दोनों में चर्चा होती है, श्री राम कर्तव्य परायण है और भरत ये प्रेम परायण है, दोनों में इतना प्रेम भरा द्वंद्व होता है और अंततः श्री राम कहते हैं कि भरत मैं आपकी जो इच्छा है उसको जानता हूँ, आप जो आग्रह कर रहे जो राज दे रहे उसका मैं स्वीकार करता हूँ। तो भरत बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं लेकिन प्रेम का भी एक स्वभाव होता है, क्या होता है प्रेम का स्वभाव होता है, जब हम प्रेम अपनी इच्छा से करते वो स्वार्थी प्रेम होता है, लेकिन प्रेम जब जिससे प्रेम करते हैं उसकी इच्छा अनुसार हम प्रेम करते वो निस्वार्थ प्रेम होता है। अगर आपका प्रेम निस्वार्थ है तो मैं चाहता हूँ कि जो आपका राज है उसको मैंने स्वीकार किया है, अभी राज 14 वर्ष के लिए आप संभालो, ये मेरी इच्छा है। तो वही हो गया जो श्री राम चाहते थे और फिर वापस वो श्री भरत को उसको स्वीकार करना होता है, करना पड़ता है। तो कहते हैं ठीक है कम से कम आपके जो पादुका है वो दे दो। फिर पादुका देते हैं लक्ष्मी को लाने के लिए, कहते श्री रामचंद्र वहाँ अपने चरण को रखते हैं और भरत महाराज क्या करते हैं पादुका को अपने सर पर रखकर वो वापस अयोध्या जाते हैं और 14 वर्ष तक वो जो पादुका है वो राज सिंहासन के ऊपर होती है और भरत महाराज नंदीग्राम में रहकर वो चाहते कि जो अंदर जमीन के अंदर रह खड़ा करते हैं वहाँ पे शैया करते हैं वहाँ, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र मेरे स्वामी अगर घास के शैया पर सोते जमीन पे तो जमीन पे सोने का भी मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि मैं उनका दास हूँ। तो खड़ा करके गुफा बनाकर वहाँ पर भरत महाराज 14 वर्षों तक खाली बार्ली और गौमूत्र ग्रहण कर कर भरत महाराज वहाँ 14 वर्षों तक रहते और पूरी तरह से कठोरता से अयोध्या का राज्य भी संभालते, और वहाँ पे कौन, भगवान श्री रामचंद्र की पादुका जो है राज सिंहासन पर रखे हैं। इस प्रकार से वहाँ श्री रामचंद्र फिर चित्रकूट में, जब उनको पता चलता है कि अभी सबको पता चला है कि हम लोग यहाँ है, तो वो क्या करते हैं, फिर चित्रकूट से निकलकर जो अरण्य है दंडकारण्य उस ओर निकलते हैं, और जाते जाते अत्रि मुनि माता अनुसया वहाँ मिलते, बड़ी उनका भेंट होता है, और वहाँ से फिर अरण्यकांड शुरू होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से एक अयोध्या कांड, जे जहाँ पर अयोध्या में जो जो खास करके जो घटनाएं हुई, भगवान श्री रामचंद्र का जब वहाँ घोषित किया गया कि इनको राजकुमार युवराज बनाएंगे, उसके बाद जो भी एक मंथरा कैके के द्वारा जो कट रचा गया, और फिर बाद में उनको वनवास का खास करके जो सबसे तीव्र विरह का जो प्रसंग है यहाँ पर आता है। इसलिए रामायण जो है करुण रस, हर व्यक्ति जो है दूसरे का सुख के बारे में सोचते हैं। श्री राम दशरथ के सुख के बारे में, माता कौशल श्री राम के सुख के बारे में सोचते हैं, सीता श्री राम के सुख के बारे में सोचते, श्री राम सीता के बारे में सोचते हैं। तो हमेशा दूसरों को सुख देने के बारे में सोचना, दूसरों का भला करने के बारे में सोचना रामायण है। हरे कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र की, रामनवमी महामहोत्सव की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।